एक काम आया दिल्ली से
जी,
काम था 12 लाख रुपए का, और मुझे लगा कि मैं पहली बार 12 लाख का काम मतलब करने जा रहा हूं। उन्होंने मुझे लाख रुपए दे दिए कि ये आप रखिए, साइनिंग होगी। राजेश भाई मैं पूरी रात सोया नहीं, क्योंकि मुझे वो काम आता ही नहीं था।
ओ,
और काम ले लिया,
जिसका टोकन ले लिया
जी, वो काम आता ही नहीं है।
ओ माय गॉड,
अब मैं सोचूं कि भाई ले तो लिया लालच में, लेकिन अंदर से गिल्टी हो रहा हूं कि साला काम होगा कैसे। काम जब आता ही नहीं है तो होगा कैसे। मेरी मिसेज बोली कि आज आप परेशान क्यों हो, साइनिंग अमाउंट लेके आए हो, वो भी लाख रुपए का,
खुश होना चाहिए,
खुश होना चाहिए। मैंने कहा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सुबह जब होगी और वो मेरे घर आएंगे या मैं उनके पास जाऊंगा, मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे आता ही नहीं।
अच्छा
तो क्या बोले, तो फिर यही होगा, चेक उनका वापस कर देना, सो जाओ, और क्या होगा। मैं चलो ये भी ठीक है सर। मैं सोया नहीं, सुबह नहा धो के चाय वाय पी के मैं सीधा ऑटो पकड़ा और दादू के घर,
अरविंद जैन जी।
अच्छा,
और दादू भी चकरा गए, वो भी शायद मॉर्निंग टी पी रहे थे। अरे सुबह सुबह, मैंने दादू मैं बहुत फंस गया हूं, पर आप निकाल सकते हो, बता क्या हुआ। मैंने कहा पहले आप वादा करोगे निकाल दोगे, और मैंने कहा ये भी समझ लो रुपये पैसे की कोई बात नहीं है, कि मैं कुछ मांगूंगा और आप कुछ दोगे, बस बात की बात है। बोले तू मेरा अनुज है यार, बोलना क्या हुआ। मैंने कहा दादू ये हुआ कि मैंने एक काम पकड़ लिया, वो बैले है, बैले मैंने कभी लिखा नहीं है, और आपसे बड़ा बैले लिखने वाला कोई नहीं है।
बिल्कुल,
ये काम मैंने पकड़ा है 12 लाख रुपए में।
अच्छा,
1 लाख रुपया मैं ले चुका हूँ, आपको 11 और मिलेंगे
जी,
आप ये काम कर दीजिए। बोले तेरा दिमाग खराब है क्या, मैं तो 20 लाख रुपए लेता हूँ।
अच्छा,
मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कर दीजिए।
अच्छा,
मेरी इज्जत रह जाएगी। कहना अच्छा डन, अगर मैं उनसे बढ़वा लूँ तो। मैंने कहा तय इतने में कर लीजिए आप, फिर धीरे से आप बढ़ा लेना, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं,
ये काम हो जाए,
पर ये उनका काम हो जाए, मतलब अभी आपको इतना ही करना पड़ेगा। कहाँ है पार्टी, मैंने कहा संजनसन में, तो वहां चलना। मैंने कहा नहीं तुम यही रहो, मैं लेके आता हूँ। अब मैंने भी चाय पी और उन्होंने मेरे को कुछ नाश्ता भी कराया, फिर जा आराम से।
और घर में बहुत खातिरदारी, बहुत
अरे भाई, वहां से फिर मैं निकला साहब, और मैं संजनसन आया, सब लोग नहा धो के तैयार थे। मैंने कहा भाइयों एक बात बताऊं आपको, मैंने 1 लाख रुपए का चेक आपका जो लिया है वो मेरी जेब में है, लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं, कैश तो मैं ही कराऊंगा, क्योंकि मेरे हालात ठीक नहीं है और मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन आपका काम नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो मुझे आता ही नहीं है। मैं बोले यार, जो अब एक तो था प्रोड्यूसर, एक था फाइनेंसर, और एक जो लेके आया था मेरे पास, तो वो मेरी शक्ल देखे, भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, आपसे बड़ा कोई राइटर ही नहीं है। मैंने कहा वो ठीक है, ये चुनरिया उनरिया लिखना बात समझ में आती है, पहले मुझे लिखना नहीं आता। तो फिर मैंने कहा मैं अपने से बड़ा अगर आपको कोई दे दूं तो मेरी जान छोड़ो यार, 1 लाख रुपए समझो कमीशन ले लिया मैंने, और तुम नहीं ले सकते उसको, तुम उसको 50 लाख में भी नहीं ला सकते।
बिल्कुल,
अब मैं 12 लाख में ला रहा हूँ। दादू को 11 का प्रॉमिस किया, इनको बोला पूरे 12 देने पड़ेंगे तुमको, ये लाख मेरा। बोले कौन है, हमने कहा बता दूंगा, बोलो। बोले बताइए, रविंदर जैन। अरे तुरंत बल्ली उछल गए वो तो, अब कौन सुधाकर। बोले ठीक है बात कराओ। हमने कहा चलो, हमने टैक्सी की, साहब दादू के घर आ गए, उनको फोन कर दिया हम आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर समोसे नाश्ते वास्ते
और सजा।
हमने कहा दादू ये है, मैं गया दादू के पास अंदर कमरे में, इनको बाहर बिठाया, दादू एक बात बोलूं, पार्टी तो आ गई, अब मेरी एक शर्त। बोले मतलब, मैंने कहा देख लो, वो शर्त अगर आपने नहीं मानी तो फिर पार्टी को मैं कहीं और ही ले जाऊंगा।
अच्छा, राहुल पट्टी प्यार से।
बोले क्या मतलब, मैंने कहा जब आप लिखोगे तो मैं आपके साथ बैठूं। अच्छा बोले तू सीखना चाहेगा, मैं गुरु दक्षिणा 12 लाख की।
वाह,
विधा तो सीखूंगा आप ही से, फिर मेरा क्या फायदा होगा। कहना ठीक,
क्या
चलो बाहर। बाहर लाया साहब, अब वो पता नहीं वो क्या इम्प्रेशन लाए, बोले दादू करना तो था 12 लाख में, लेकिन आपको 15 दे देंगे हम।
अच्छा,
खुद ही एक्साइटेड हो गए।
अभी एक्साइट रविंदर जैन थे,
बिल्कुल ब्रांड बहुत बड़ा।
अब तो दादू और भी खुश,
समझे फिर आए।
अरे फिर तो जब बर्फियां भी आ गई, तय कर लिया भाई 15 लाख में ये सब करना है। दादू मेरे को अंदर लेके गए, 11,000 रुपए मुझे और दे दिए उन्होंने, बोले तू चेक कैश करा ले। मैं खुश हो गया। अब पहले दिन जब मैं बैठा उनके साथ, मेरी समझ में आ गई, यार ये तो खोदा पहाड़ निकली चुई थी, मैं भी लिख सकता था।
अच्छा
अच्छा,
कुछ था ही नहीं लेकिन मुझे नहीं आता था।
हाँ,
दो दिन बैठा मैं, तीसरे दिन मैंने बोला दादू एक शर्त हो, बोले तू बोल दे सारी शर्त। मैंने कहा इसमें दो भजन मेरे भी ले लो।
अच्छा,
मैं भी लिख सकता हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा मैं चाहता हूँ, अब तक मेरी जिद ये थी कि जब भी मैंने काम किया तो लिरिक्स में आपका नाम नहीं आने दिया, इसमें लिरिक राइटर रविंद्र जैन सुधाकर शर्मा आएगा तो मुझे मजा आएगा। बोले चलो कोई बात नहीं। अब साहब मैंने वो भजन लिखे, और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैं लिखता क्यों नहीं हूं।
अच्छा,
मैंने जब भी कोई लिखा वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ।
अरे
तो मेरे कई मन में डर बैठ गया, कई बार आजमा लिया मैंने, तो मैं लिखता ही नहीं। लेकिन चूंकि जैन साहब के यहाँ जाना था तो मैंने लिखा, क्योंकि उनको तो पेपर देना पड़ेगा। मैं साहब बड़े मूड में मैंने लिखा, मेरा कहा देखो धुआं उतार दूंगा, मेरे ही भजन सबसे प्रिय होंगे। मैं गया जाके तो पार्टी बैठी हुई थी, दादू भी बैठे थे। दादू को मैंने कहा कि दादू ये दो सुन लीजिए। दादू ने सुने, और सुनने के बाद अपने सुना डाले उनकी जगह। अच्छा, ये भी सुन लीजिए। प्रोड्यूसर बोले दादू आपका बहुत अच्छा। तो उनके लग गए, मेरे रह गए। अब मैं जो गया था, मेरा तो 140 रुपए तो ऑटो में ही लग गए। मैं क्या बोलूं? तो दादू बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, अपन ठीक कर लेंगे, तो बहुत है अपने पास तो अब करते रहेंगे, फिलहाल ये तो करते हैं। मैंने राजेश भाई, मेरे को जब कोई ठेस लगती है या गुस्सा आता है तो मैं पैदल चलता हूँ।
अच्छा,
तो मेरी शक्ति वहां लग जाती है, मैं वो गम को भूल जाता हूँ।
क्या बात है,
पैदल चलता हूँ, मेरी ये आदत है अटिल टूडे। मैं बांद्रा से पैदल चल दिया, लेकिन मैं जूत गोरेगांव तक तो पैदल नहीं आ सकता था। कार पे आके जो है ना, एक बस रुकी हुई थी सिग्नल पे, चढ़ गए। अब मैं जब डीएन नगर आया तो एक कॉल आता मुझे।
अच्छा,
कि भाई सुधाकर जी आप कहाँ हैं? तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब तो था ही, मैंने कहा कहाँ हूँ यार, यही हूँ। बोलिए क्या काम है? बोले आपके पास कोई कृष्ण भजन है क्या?
ओ अच्छा,
मैंने कहा हाँ है, मैं तो जिम नहीं था।
हाँ,
तो बोले आप रेड रिबन में आ सकते हैं? मैंने कहा आ जाऊंगा। अब अननोन नंबर है। अब मैं पूछूं, अगर मैं पूछूं तुम कौन बोल रहे हो, तो यार एक तो आदमी काम दे रहा है, ऊपर से मैं ही नाम पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने अगले सिग्नल पर उतरा, ऑटो किया रेड रिबन। रेड रिबन पर आके मैंने काउंटर वाली को पूछा कि रिकॉर्डिंग किसकी चल रही है? बोले पंकज उदास की।
वाह
अच्छा,
फोन था पंकज जी का।
अरे वाह,
पंकज जी ने फोन किया,
क्या बात,
उनका नंबर मेरे पास था ही।
अब
मैं तो खुश हो गया, मैं गया जाके, पंकज जी सामने थे। अरे यार बड़ी जल्दी आ गया, मैं डीएन नगर में ही था। आपका फोन आया, ऑटो पकड़ के यहाँ आ गया। क्या बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बैठो बैठो बैठो। यार वो कृष्ण भजन अली गनी बोल रहे थे कि आपके पास, आप बहुत अच्छा लिखते हैं भजन का ये वो। मैंने कहा हाँ, तो अली गनी आ गए, उन्होंने मेरा नाम सुझाया। अब मैंने भजन सुनाया तो पंकज जी को पसंद आ गया। बोले लेकिन यार ये ट्यून इनकी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा इस ट्यून पर कर देता हूँ इसको।
अच्छा,
5 मिनट में मैंने वो अपना थॉट उनकी ट्यून पर कर दिया। पंकज जी बहुत खुश हुए, कहने कोई एक और है क्या? मैंने कहा है
दूसरा,
दो ही थे मेरे पास। मैंने कहा ये तीसरा मांगेंगे तो मैं लिख दूंगा। दोनों भजन मैंने कर दिए। पंकज जी बोले बैठो जाना नहीं। 12 बजे तक रिकॉर्डिंग चली। पंकज जी का पहला भजन का कैसेट है जिसका टाइटल भजन मेरा है।
वाह वाह वाह, इस तरह पहला यहाँ भी
ये भी पहला आ गया। और जब मैं निकला वहां से तो उन्होंने 50,000 का एक चेक दिया मुझे।
वाह,
तो देखिए जो मैं मुफ्त में देने जा रहा था।
क्या बात है।
अब दादू का सुबह ही आ गया 7 बजे फोन।
अच्छा,
बोले रे वो जो तेरा एक भजन था वो बहुत है। मैं दादू तो कल ही बिक गया।
वाह वाह,
तो इतने हंसे। तो बोले यार बदमाश तू तो पहले ही सौदा करके आया था। मैंने कहा नहीं दादू हो गया।